ഭൂതകൾക്കാണ്, നമോ സുഖാണം, നമോ ആയതിയാണം, നമോ ഉപചാരണം, നമോ ലോയി സൗസാവണം, നമ സമയ സാരായോ സ്വാനുഭൂത്യാചകാശത്തെ ചിത്സ്വഭാവായ ഭാവായ സർവഭാവാന്തരക്ഷിതേ അനന്തധർമ്മണസ്തത്വം പശ്യന്തി പ്രത്യഗാത്മന അനേകാന്തമയി മൂർത്തി നിത്യമേവ പ്രകാശതാം വേദ വിജ്ഞാനത സിദ്ധ സിദ്ധായേ കില കേചന അസ്യേവ ഭാവതോ ബദ്ധ ബദ്ധായേ കില കേചന. അമൃതചന്ദ്രാചാര്യനെ बारह अंकों के सार ये श्लोक बनाया है. वेद विज्ञान तो सीधा अभी तक जितने अलग सिद्ध भगवान तो हुए हैं वो सबका पता उन्होंने कर लिया है कि वो कैसे सिद्ध हुए हैं, कि वेद विज्ञान से हुए हैं. अनंत काल पहले जो भी सिद्ध हुए थे वो भी कैसे सिद्ध हुए, कि वो वेद विज्ञान से हुए हैं. और जो अभी तक जो वेद विज्ञान नहीं करते हैं वो अभी तक संसार में रूल रहे हैं. तो अपना विषय यही है कि वेद विज्ञान तो सीधा अपने को वेद ज्ञान कैसे होए और अपन जो संसार की जो दुख से कैसे छूट के सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त करे वो अपना विषय है. तो उसमें अभी अपने को ये पूज्य बेन श्री की तत्व चर्चा है, स्वानुभूति दर्शन नाम से प्रसिद्ध है, ये अपने को लेनी है. उसमें वेद ज्ञान संबंधी जितने भी बोल है थोड़े थोड़े छूट के सुने हुए हैं वो अपन इसमें लेंगे. पूज्य बेन श्री धर्मात्मा है, आत्मज्ञानी है और स्वानुभूति से विभूषित है. तो ये स्वानुभूति दर्शन उनका तत्व चर्चा का पुस्तक है. उसमें 307 बोल अपन लेते हैं. पहले प्रश्न है, राग अने ज्ञान जुदा से एटलू जाने तो पूरतू थे रहे के द्रव्य अने पर्याय नो भेद ज्ञान करवूज पड़े. जो अपना अस्तित्व है वो द्रव्य पर्यायत्मक अस्तित्व है, अन्य द्रव्य से तो अपना कोई संबंध नहीं है. मगर अपने द्रव्य और अपने पर्याय में क्या भाव है, कि द्रव्य है वो अनंत शक्तिमय है और पर्याय में दो प्रकार के भाव चल रहे हैं. एक राग का भाव भी चल रहा है और एक ज्ञान का परिणाम भी चल रहा है, ज्ञान का भाव भी चल रहा है. तो दो प्रकार के भाव चल रहे हैं ऐसा भी शिष्य को मालूम है. जो प्रश्न का है उसको मालूम है और अन्य द्रव्य से मेरा कोई भी संबंध नहीं है इतना उसने तो नक्की कर लिया है. इसलिए ये प्रश्न पूछता है कि राग अने ज्ञान जुदा से एटलू जाने तो पूरतू थे रहे के द्रव्य अने पर्याय नु भेद ज्ञान करवू पड़े. ज्ञान माने क्या, कि ज्ञान माने आत्मा. और आत्मा कैसा है, कि ज्ञानमयी आत्मा. आत्मा ज्ञानमयी है और राग है वो अलग है. तो राग से तो भेद ज्ञान करना वो तो उसको मालूम है कि राग है मेरा स्वभाव नहीं है. मगर ज्ञान और आत्मा माने ज्ञान पर्याय और आत्मा ये दो के बीच में भेद ज्ञान करना कि नहीं ऐसा प्रश्न है. अभी इसका समाधान करती है मेरे पूज्य बेन श्री कि राग अने ज्ञान जुदा छे कारण के नायक भाव पोतानो स्वभाव छे अने राग छे ते पोतानो स्वभाव नथी, विभाव छे. नायक भाव पोतानो स्वभाव छे एटले ज्ञान में आत्मा जो है एक भाव जो अपना है वो अपना स्वभाव है और राग है वो अपना स्वभाव नहीं वो विभाव है. अभी पूज्य गुरुदेव का प्रवचन भी इसी बात पे चलता है कि उपयोग में उपयोग है वो क्रोधादि में नहीं है. वही बात इधर लेते हैं, राग है वो स्वभाव नहीं है विभाव है और आत्मा ज्ञान में है. तो ज्ञान में है तो उसमें दो प्रकार के भाव आते हैं, वो द्रव्य रूप भी है और उसका परिणाम भी होता है. दोनों ज्ञान में भाव है. जो अपना द्रव्य स्वभाव है वो अनंत शक्तिमय अपन शुद्ध है, वो उसकी जितनी शक्तियां हैं वो भी शुद्ध रूप से विराजमान है. चैतन्य शक्ति है वो भी शुद्ध रूप से, वो ज्ञान में है और उसका परिणाम उसमें से चैतन्य अनुविधायी परिणाम जानना 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 लक्षण जो अपना प्रकट हो रहा है वो भी ज्ञान में है. तो उसमें दो भाव है, न्यायिक भाव और उसका ज्ञान का परिणाम. जयरे पर्याय छे ते कोई अपेक्षा है पोता नहीं छे, राग छे તે પોતાનો સ્વભાવ નથી વિભાવ છે જ્યારે પર્યાય છે તે કોઈ અપેક્ષા એ પોતાની છે અને ઇધર જો પર્યાય લેની હે વો કોણ સી પર્યાય લેની હે કે રાગ કી પર્યાય હે વો તો અપના ભાવ નહીં હે વો મગર જો પર્યાય હે વો કિસી અપેક્ષા સે અપની હે ઇધર જો પર્યાય લેની હે વો જ્ઞાન કી પર્યાય લેની હે રાગ કી પર્યાય તો અપની નહીં હે રાગ મેં સબ લે લેના ક્રોધ માન માયા લોભ મોહ રાગ દ્વેષ કે જીતને ભી પરિણામ હોતે હૈ વિકલ્પ હોતે હૈ મૂળ ગુણી કે ભેદ કે વિકલ્પ હોતે હૈ ઇતને એસા સુભા હોય દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી શ્રદ્ધા કા મૂળ ગુણી કે ભેદ કા વો સબ રાગ રૂપ પર્યાય હૈ વો અપના નહીં હૈ વો વિભાવ હૈ ઓર જ્ઞાન હૈ વો અપના સ્વભાવ હૈ ઇસ પ્રકાર સે વો સમજા રહે હૈ ઇસમેં યે સબસે પહેલે તો યે જો સમજતે હૈ અપન તબ યે કુછ સમજને કી યા ધારણા મેં લેને કી બાત નહીં હૈ જો વેદના કી બાત હૈ वो धारणा में रखने की बात नहीं है वो प्रयोग की बात है तो उसमें प्रयोग करने की बात है तो अपन किधर खड़े हुए हैं उधर से अपना प्रयोग चालू करना चाहिए अनुभव जब होता है तब वेदनान होता है वो वेदनान जो होता है वो ही वेदनान है वास्तविक में तभी वेदनान होता है मगर उसके पहले जो अनुभव के लिए जीव प्रयोग करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है तो स्टेप बाय स्टेप में क्या है कि जिसके साथ अपनी एकत्व बुद्धि है अभेद बुद्धि है उससे अपने को वेदनान करना है जो अपने से भिन्न है मगर उससे साथ में अनादिकाल से जीव की अपनी अहम बुद्धि चल रही है एकत्व बुद्धि चल रही है जो भिन्न है उसको भिन्न नहीं करने का है मगर उससे भेद है ऐसा ज्ञान करने का है वेदनान अपने को अंदर में करने का है जो भिन्न तो है मगर जो भिन्न है वो अपने को यदि अभिन्न पढ़ना लगता है उसमें तो उससे वेदनान अपने को करना है उसका प्रयोग करना है तो भिन्न क्या है कि अपने को एकत्व बुद्धि किधर चलती है कि बाहर में पदार्थों के साथ एकत्व बुद्धि चलती है इधर तो राग का ही प्रश्न लिया है मगर अपने को सोचना पड़ेगा अपने को देखना पड़ेगा अपनी एकत्व बुद्धि किधर पड़ी हुई है तो बाहर के पदार्थों में अपनी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है तो बाहर के पदार्थ जो है उसमें दो प्रकार के भाव अभी अपने को दिखते हैं एक अबदनो कर्म है और एक बदनो कर्म है द्रव्य कर्म है मगर वो द्रव्य कर्म तो अपने को दिखता नहीं है नो कर्म जो है उसमें यदि एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है अबदनो कर्म माने क्या कि ये जो कुटुंब है अपना घर है पैसा है ये समाज है ये मंदिर है ये सब अबदनो कर्म है और बदनो कर्म माने क्या कि अपना शरीर जो है वो अपने आयुष तक बंधा हुआ है तो ये बदनो कर्म है तो जब तक इसमें स्थूल बुद्धि अपने एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है तब तक वो तत्व का अभ्यास कितना भी करे वो प्रथमानुयोग का अभ्यास करे चरणानुयोग का कर्णानुयोग का द्रव्यानुयोग का कितना भी अभ्यास करे गुरुदेव ने जो भी बात कही हुई है समीकरण का वो सब उसको पता पड़ जाए वो धारणा में ले लेवे और इतना अभी स्वयं तो होता है जीव को कि वो ख्याल में तो ले सकता है मगर अपनी एकत्व बुद्धि यदि वो उसमें पड़ी हुई है अबदनो कर्म में तो उसको उधर से शुरू करना चाहिए प्रयोग के लिए समझने के लिए तो सब बात ठीक है मगर वो समझने से धारणा में लेने से उसमें कुछ फायदा नहीं है उसमें अपने को कुछ फल मिलने वाला नहीं है वो सब उदार ज्ञान है उदार ज्ञान है इधर माने कि जब तक इधर अपना जो आयुष है तब तक वो धारणा ज्ञान अपने साथ में रहेगा जैसे शरीर अपने साथ रहता है ऐसे ही धारणा ज्ञान अपना जितना सब जब तक शरीर है आयुष है तब तक रहेगा वो आयुष पूरा होते ही वो धारणा ज्ञान सब खत्म हो जाएगा और इधर भी ये जब भी अपना आयुष चलता है उस टाइम में भी वो धारणा ज्ञान है वो अपने को भूल जाते हैं वो अपने को नहीं ख्याल में पड़ता है मगर जो अपना अपना खुद का जो यदि उसको निर्णय हो तो वो बराबर ख्याल कर सकता है कि उसमें वो भूल नहीं पड़ती है तो यदि अबदनो कर्मों में है एकत्व बुद्धि तो कितनी भी वो बात सीख ले और समझ ले और बात कर ले कि ये केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरी नहीं है ये शुद्धता भी मेरी नहीं है वो परद्रव्य है परभाव है इससे कितनी भी बात कर ले मगर वो थोड़ा अपना धंधा में नुकसान हो जावे पैसे में नुकसान हो जावे तो अपने को इधर आकुलता हो जाती है समाज में कोई भी अपमान कर देवे वो मान नहीं देवे तो अपने को इधर वो दुख हो जाता है आकुलता हो जाती है तो उधर से अपने को वेदना करने का है वो बात सब है वो सब बात समझने जैसी है मगर अपना अपन की स्थिति किधर है कि अपने को परद्रव्य के साथ जिसके साथ एकत्व बुद्धि चलती है उसके साथ से अपने को वेदनान करने का प्रयोग चालू करने का है जो अपना अपना लड़का है वो अपने कह के अनुसार नहीं करता है तो वो अपना आतुरता बढ़ जाती है कि ये क्यों नहीं करता है इस प्रकार से। तो समझना चाहिए, वो सोचना चाहिए कि वो स्वतंत्र द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कुछ भी संबंध नहीं है। ये तो जैन दर्शन की ABCD है। ये गुरुदेव के तत्वज्ञान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले का पहला जो निर्णय है वो ये करने का है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये वो सब परद्रव्य है, तो अपने स्वतंत्र पड़े कायम अपने में रह गए उसका परिणाम चलता है। बाद में कितने भी जीव हुए और बाद में कितने भी पुद्गल परमाणु हुए तो कायम अपने स्वभाव में टिक के ध्रुवपण कायम रखे उसका परिणाम चलता रहता है, उसमें अन्य द्रव्य का कोई भी प्रवेश नहीं है। तो अपने को वो इस प्रकार से वेदना करके कि नहीं ये मेरा है ही नहीं तो मेरे अनुसार कैसे वो परिणाम है, इस प्रकार से उसका वेदना करना और उससे वेदना करते ही वो उतनी प्रकार की आकुलता है वो अपने को मन पड़ेगी, वो मिथ्या तो मन पड़ेगा, वो अपने को भी पता चलेगा। जब पहले अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं होता था तभी अपने को जितनी आकुलता होती थी, ये जब वेदना का प्रयोग करेंगे तो अपने को उसमें आकुलता मिथ्या तो घटने के कारण से आकुलता भी मन पड़ेगी, वो अपने को पता पड़ेगा। ये सब रोकड़ा है धर्म है, ये जो धर्म है वो रोकड़ा है, धर्म ही है। जितना भी उसमें अपना का जो कार्य होता जाएगा वेदना होता जाएगा उतना मिथ्या तो गलता जाएगा। वो मिथ्या तो गले उसका पता अपने को पड़ता है और किसी को नहीं पड़ता है और किसी को नहीं दिखाई देता है, मगर अपन किधर खड़े हुए हैं उससे अपने को मालूम पड़ता है। तो ये जो अभेद भिन्न नौकर में है तो उससे तो सबसे पहले वेदना करना, और वो वेदना करने के बाद भले वो समय ज्ञान पूर्वक वेदना न होवे मगर फिर भी वो वेदना करने के बाद में वो ये सब मालूम पड़ जाएगी, ये तो स्वतंत्र द्रव्य है, क्रमबद्ध में अपने कारण से परिणाम रहे हैं, मैं तो ज्ञान में आत्मद्रव्य हूँ तो मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा वेदना करने के बाद में वो अपना शरीर जो है वो बद्ध नौकर में है, वो अपने साथ ही रहता है। वो बाहर के द्रव्य है वो तो कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं, अपना लड़का है पैसे है तो वो कभी आता है और कभी चला जाता है, वो उससे तो वेदना करना इजी है, सहला है, मगर अभी जो अपना शरीर है वो तो आयुष जब तक रहेगा तब तक अपने से बंधा हुआ ही रहेगा, तो वो अपने से छूटा नहीं पड़ता है, तो उससे वेदना करना। फिर उसके बाद में कि शरीर का जो परमाणु है वो तो अनंत परमाणु से बना हुआ स्कंध है, वो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो पुद्गल द्रव्य है, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, इस प्रकार का जब भी वो उसमें फेरफार हो जावे तब उससे वेदना करना। सब बातें समझ ली है कि वो कर्म से आत्मा भिन्न है, द्रव्य कर्म से भिन्न है, भाव कर्म से भिन्न है, एक समय की पर्याय से भिन्न है, मगर अपन की स्थिति किधर है कि अपन की स्थिति तो उधर लटकी हुई है जिसमें थोड़ा भी बुखार आ जावे, थोड़ा भी उसमें यदि फेरफार हो जावे तो अपने को उसमें आकुलता हो जाती है और मेरे को क्या हो गया, मेरा क्या होगा, ऐसा विचार आता है। तो उस टाइम में उस प्रकार का वेदना करना, तो उस प्रकार का वेदना करते करते उससे पैसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो राग है उस वो परद्रव्य के साथ से छूटा पड़ने के बाद में अभी राग है उसका क्या करने का, कि राग है वो परद्रव्य से वेदना करने के लिए पहले इसे कहा जाता है कि तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, तू अपने में संकल्प विकल्प कर सकता है, इसको तू उठा नहीं सकता है, इसको ये उठा के मैं इधर रख दूं ऐसा संकल्प विकल्प कर सकता है मगर इसको तू नहीं कर सकता है, ऐसा सबसे पहले ये राग मैं कर सकता हूँ इस भाव में यदि आवे तो। जैसे आज तुझे गुरुदेव श्री बता रहे थे कि प्रवचन सार में कहा हुआ है कि जो आत्मद्रव्य है उसको पहुंच बढ़ता है, आत्मद्रव्य ने पहुंची बढ़े रागनी पर्याय हो ज्ञाननी पर्याय हो अशुद्ध पर्याय हो शुद्ध पर्याय हो बधाने आत्मा पहुंची बढ़े, तो इसलिए वो पर से वेदना करने के लिए यदि राग अपने में होता है इतना सिद्ध करना पड़े तो करो, मगर इसको तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा पहले सबसे पहले एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से वेदना करने का अपने को प्रयोग करना चाहिए। वो ऐसा करके यदि वो उसमें नजीक में आ जावे अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक अस्तित्व में आ जावे तो उसके बाद की ये बात चल रही है अभी कि परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसमें कुछ भी फेरफार हो जावे वो क्रमबद्ध में जैसा परिणाम करना है वो ऐसा परिणाम करे, अपने को विकल्प आ जावे तो वो अलग बात है मगर उसमें तो मैं फेरफार कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार का वेदना सबसे पहले परद्रव्य के साथ करने के बाद में जो अभी अपने में राग होता है, राग भी उसके परिणाम होते रहते हैं, तो वो मेरा है कि नहीं वो तो मेरा नहीं है, क्योंकि राग भी संयोगी भाव है, जैसे बाहर के द्रव्य है वो संयोगी द्रव्य है, संयोगी द्रव्य अपने अधीन नहीं है, वो संयोगी द्रव्य अपने अधीन नहीं होने के कारण से वो कभी अपने पास में नजीक में आते हैं और कभी चले जाते हैं और अपन भी चले जाते हैं और ये सब इधर पड़े रहते हैं। इस प्रकार से संयोगी द्रव्य से जैसे भेदना करना है उसी प्रकार से उसके लक्ष्य से होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो भी संयोगी भाव है, वो अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए उससे भी भेदना करना, क्योंकि वो आत्मा के चैतन्य स्वभाव से उसका मेल नहीं खाता है। वो चैतन्य स्वभाव अपना जो ज्ञान स्वभाव है वो भिन्न है और ये जो रागादि भाव है वो भिन्न है। वो तो अनेक प्रकार के न्याय से गुरुदेव पूज्य गुरुदेव समझाते हैं, इसलिए ये सब राग के भेदना करना वो यदि ख्याल में आ जाए तो उसके बाद के अभी प्रश्न है इधर कि उसके बाद में ये ज्ञान भी परिणाम, ज्ञान का परिणाम भी चालू है। एक राग होता है उसी के साथ में जानना 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 परिणाम चलता है, क्रोध आता है तो क्रोध चला जाता है, मान आता है मान चला जाता है, बल्कि ज्ञान रह जाता है। मान का भाव आ गया, किसी ने अपना अपमान कर दिया तो दुख हो गया, तो दूसरे दिन या एक घंटे के बाद में वो सोचता है कि ये तो स्वतंत्र है, ये किसी ने मेरे को ऐसे अपशब्द कहे तो वो तो स्वतंत्र द्रव्य है, भूतगल का परमाणु का द्रव्य स्वतंत्र है तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से उससे यदि वो पाछा बन जावे और अपने स्वभाव के सम्मुख हो जावे, वेदना कर देवे तो आकुलता मंद हो जाती है और मिथ्या तो बल जाता है। तो उसका ज्ञान रोता है कि पहले इस प्रकार का क्रोध का भाव आया था मगर अभी क्रोध नहीं आता है, तो क्रोध का भाव उसी समय में भी क्रोध का भाव भिन्न था और ज्ञान का भाव भिन्न है। और इस प्रकार से ज्ञान की पर्याय और क्रोध की पर्याय दो प्रकार के भाव पर्याय में अभी चल रहे हैं। तो अभी पर्याय में जो ज्ञान का भाव चल रहा है उसके और ज्ञाय द्रव्य उसमें क्या स्थिति है, उसके बीच में भी भेदना करना कि नहीं, तो उसमें बता रहे हैं। जारे पर्याय से कोई अपेक्षा है होता नहीं इधर, इधर जो पर्याय लेनी है वो कौन सी पर्याय लेनी है कि ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान में भी कौन से भेद लेना है, वो इंद्रिय ज्ञान वाला भेद लेना है, कुमति ज्ञान लेना है, सुमति ज्ञान लेना है, केवल ज्ञान लेना है, ज्ञान के तो भेद है, ज्ञान की पर्याय जो है वो भेद रूप से सुमति ज्ञान ऐसे बोलते हैं नहीं इधर बराबर है। वो जो ज्ञान की पर्याय के कोई भी भेद मत देखो, अभी ज्ञान की पर्याय जो है उसके भेद पड़ जाते हैं, वो ज्ञान रूप भी होता है, वो इंद्रिय ज्ञान रूप भी खंड खंड होता है, फिर वो उसमें कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान कुअवधि ज्ञान होता है, फिर उसका अभाव करके जो अपना आत्मस्वभाव को जो अनुभव करता है तो सुमति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान होता है, और ऐसा अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से अनुभव करता है तो केवल ज्ञान पकड़ता है। ऐसा कोई भी भेद अभी मत देखो, मगर ज्ञान का भाव है वो सामान्य ज्ञान जो अपन इधर में चार उंगली से समझाते ना, तो चार उंगली है तो ये अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, अनंत शक्ति में त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, और उसमें हरेक गुण की वर्तती हुई उसके कारण शुद्ध पर्याय है, ध्रुव 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 प्रवाह ध्रुव परिणमन उसमें चालू है, उसमें वर्तने वाली जो पूजित पंचम भाव की परिणति ये कारण शुद्ध पर्याय, ये दो के पूरी अपनी ध्रुव सत्ता है, ये पूरी दो के अपनी ध्रुव सत्ता है। ध्रुव सत्ता है वो ज्ञायिक भाव है, वो अपना द्रव्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, भूतार स्वभाव है, परम प्राणायिक भाव है, सामान्य अपना स्वभाव है। तो ये द्रव्य स्वभाव जो है उसमें तो ये भाव आ गए दो दो उंगली। अभी पर्याय में क्या है, पर्याय में दो प्रकार के भाव, पर्याय में एक ज्ञान का परिणाम चला है चालू है, चैतन्य अनुदाय परिणाम हरेक जीव को निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक कोई किसी जीव को भी ज्ञान नहीं होवे ऐसा नहीं होता है, वो ज्ञान में जीव है। तो चैतन्य का एक किरण एक अंश अंदर में से आता है, चैतन्य के अनुविदायी परिणाम चैतन्य में से आने वाला चैतन्य की जात का एक परिणाम अभी अपने पास मौजूद है, कितना भी अपन कसाई कर ले फिर भी उसमें एक चैतन्य का परिणाम है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो एक लक्षण है इसलिए उसको लक्षण बोला जाता है, और वो एक साधन है, उस साधन से अपने आत्मा को वो अपन साध सकता है। इस प्रकार का ज्ञान का परिणाम है वो तीसरी उंगली में लेते हैं अपन, और ये चौथी उंगली में रागादि भाव जो अभी लिया कि रागादि भाव जो है वो चौथी उंगली में है, तो रागादि भाव से तो वेदना करना ये तो अपना स्वभाव नहीं है, मगर ये तो सब अपना स्वभाव है, ये नित्य स्वभाव है, ये जो है अपना जो दो उंगली वाला जो है वो ध्रुव सत्ता है, तो ये अपना नित्य स्वभाव है और ये इसका एक अनित्य स्वभाव है, मगर स्वभाव है, चैतन्य का परिणाम है वो स्वभाव है, विभाव नहीं है। तो इसके और इसके साथ में भी वेददान करना ही पड़े कि नहीं, और क्या इसकी स्थिति है, ऐसा प्रश्न है। तो अभी पूज्य बहन श्री जवाब देती हैं कि पर्याय कोई अपेक्षा है होता नीचे, ये पर्याय कोई अपेक्षा से अपनी है। कौन सी अपेक्षा, वो अपने को समझनी पड़ेगी। पर ये जो है वो तो अपना है ही नहीं, अभी वेददान की बात चलती है। वो अपना वस्तु है, वो द्रव्य पर्यात्मक है और पर द्रव्य से भिन्न है, वो जीव विराग रूप से परिणमता होता है, दुखी होता है, वो अपेक्षा भी नहीं रही है। अभी अपने को स्वभाव की सिद्धि करनी है, वेदनान की सिद्धि करनी है। इससे राग है वो तो अपना है ही नहीं, उससे तो वेदनान करना है। इधर तो प्रज्ञाचिनी मार के इसको जुदा करना, मगर इसको भी इधर भी प्रज्ञाचिनी मार के इसको जुदा करेंगे कि क्या करेंगे, क्या करना, ऐसा प्रश्न है। ये जो ज्ञान की पर्याय जो है उसमें भी ज्ञाय द्रव्य है और ज्ञान की पर्याय भी है, तो द्रव्य है और पर्याय, तो पर्याय और द्रव्य के बीच में भी प्रज्ञाचिनी मार के इसको भी जुदा करना कि क्या करना। तो पर्याय है वो कथनचित अपनी है, ये पर्याय कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, तेनू स्वरूप जेम छे तेम जाणो, ते द्रव्य गुण पर्याय ने जाणो खरे, जाने खरो, पण पर्याय नी कोटी ने पर्याय तरीके जाने, अने विभाव थी जे रीते भिन्नता छे ते रीते भिन्नता जाने, ते विभाव ने सर्वथा भिन्न जाने कि अमारो स्वभाव नथी, અને પર્યાયનું જેવું કથનચિત ભિન્ન અભિન્ન સ્વરૂપ છે તેવું જાણે। એ પર્યાય કા જો સ્વભાવ હે વો કથનચિત ભિન્ન હે, વો આત્મદ્રવ્ય સે કથનચિત ભિન્ન હે ઓર કથનચિત અભિન્ન હે, ઇસ પ્રકાર સે વો દ્રવ્ય ઓર પર્યાય કે સ્વરૂપ કો જાણે। વો અપના સ્વભાવ હે, યે અપને સ્વભાવ હે પૂરે કા પૂરા, તીન ઉંગલી વાલા અપના સ્વભાવ હે। વો જો પર્યાય હે વો દ્રવ્ય સે કથનચિત ભિન્ન હે ઓર કથનચિત અભિન્ન હે, ઓર જીસ અપેક્ષા સે ભિન્ન હે વો ભિન્ન હી હે, ઓર જીસ અપેક્ષા સે અભિન્ન હે વો अभिन्न है, और प्रमाण से देखो तो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न। अब ये जो बात कर रहे हैं वो कौन सी अपेक्षा की बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसी बात भी आती है कि जैसे राग की पर्याय भिन्न है ऐसे ही ज्ञान की पर्याय भी अपने से भिन्न है। जैसे ग्यारह गाथा में व्यवहार है वो सगला अभूतार्थ है, सब सब जितने प्रकार के व्यवहार है वो सब अभूतार्थ है, और एक शुद्ध नहीं निकाली अपना जो भूतार्थ स्वभाव है वो ही भूतार्थ है। तो उधर ऐसी बात करते हैं कि वो राग की पर्याय वो असद्भूत व्यवहार, फिर उसके दो भेद किए उपचरित और अनुपचरित, और ज्ञान की पर्याय वो सद्भूत व्यवहार, दोनों अभूतार्थ है। जैसे राग की पर्याय अभूतार्थ है उसको गौण करके व्यवहार करके अभूतार्थ किया, उसी प्रकार से वो ज्ञान की पर्याय भी उसको गौण करके व्यवहार करके अभूतार्थ किया, और एक शुद्ध नहीं का विषय है वो भी भूतार्थ है, उसमें कोई भी प्रकार की पर्याय नहीं है, सब प्रकार की पर्याय जो है वो उससे तद्दन भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार से उधर बात करते हैं, ग्यारह गाथा में जो बात करते हैं वो तो ऐसे करते हैं कि वो उसमें पर्याय है ही नहीं, ऐसे शुद्धात्म द्रव्य है वो ही उपाधेय तत्व है, वो आश्रय करने योग्य है, उसकी अपेक्षा से जो पर्याय जो प्रकट हो रही है वो भी पर द्रव्य है, परभाव है और ये है, उसके द्रव्य भी भिन्न है, उसका क्षेत्र भी भिन्न है। पूज्य गुरुदेव से आज थोड़ी बात हुई थी, मैं कल तो नहीं था मगर कल वो बात चली होगी कि उसमें पर्याय के प्रदेश भी भिन्न है, पर्याय के प्रदेश माने ये ज्ञान की पर्याय के प्रदेश भी भिन्न है, वो ऊपर ऊपर तैरने वाले भाव है, प्रदेश तो वो के वो ही है, प्रदेश के भाग नहीं हो सकते, मगर पर्याय का जो भाग में पर्याय जो प्रकट होती है वो ध्रुव के भाव में नहीं होती है, ध्रुव का जो अपना स्वभाव है निकाली जो अपना स्वभाव है ध्रुव सत्ता उसमें पर्याय नहीं होती है, इसलिए उसके प्रदेश भी ऐसे ऊपर ऊपर से भिन्न है, इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। तो पर्याय के प्रदेश भी भिन्न है, क्षेत्र भी भिन्न है, उसका काल भी भिन्न है, उसका भाव भी भिन्न है, इस प्रकार की बात भी आती है। और इधर कहते हैं कि पर्याय वो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, और पर्याय अपने सर्वथा भिन्न है इस प्रकार से नहीं है, तो दोनों में मेल कैसे करना, वो कौन सी अपेक्षा से क्या कथन है, कि वो जो ग्यारह गाथा में जो कथन है वो दृष्टि की अपेक्षा से कथन है, दृष्टि प्रधान कथन है, और इधर जो बात कर रहे हैं कह रहे हैं वो ज्ञान प्रधान से कथन है कि द्रव्य गुण पर्याय ने जाने खरो पर पर्याय नी कोटी ने पर्याय तरीके जाने, उसमें ज्ञान प्रधान में द्रव्य का भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो है वो उसका स्वभाव अनेकांत है, ज्ञान का जो स्वभाव है वो अनेकांत ही है, वो अकेले द्रव्य को जाने तो ज्ञान मिथ्या है, अकेले पर्याय को जिससे अनाधिकार से जान रहा है तो वो मिथ्या ज्ञान है, ऐसे ही ज्ञान यदि अकेले द्रव्य को जाने तो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, वो एकांतवादी है, वो पशु जैसा है, वो आत्मस्वरूप को नहीं साध सकता है, इसलिए अकेले द्रव्य को जाने वो ज्ञान मिथ्या है। वो तो जब तो बता रहे हैं कि एक शुद्ध नहीं उतार दे, बाकी सब अविद्यमान अर्थ को प्रकट करते हैं, विद्यमान ही नहीं है, एकला अभेद जानते हैं। वो दृष्टि की अपेक्षा से, दृष्टि का स्वभाव क्या है, वो एकांत है। दृष्टि वो दो को नहीं स्वीकार सकती, द्रव्य पर्यात्मक अपनी जो वस्तु है उसमें से, या तो अनादिकाल से पर्याय के ऊपर दृष्टि है, तो पर्याय दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं, कि द्रव्य दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो उसमें फिर पर्याय शामिल होगी कि नहीं, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके उसमें पर्याय शामिल करके उसी द्रव्य को दृष्टि में लेने का प्रयोग करेंगे तो वो पर्याय के ऊपर ही दृष्टि रहेगी। तो पर्याय के ऊपर दृष्टि है वो तो मिथ्या दृष्टि है, तो वो अपने में शामिल नहीं हो सकती है। उससे रहित अपना जो द्रव्य है वही द्रव्य दृष्टि का विषय है। इसलिए दृष्टि एकांतिक होने के कारण से वो द्रव्य दृष्टि का विषय है, और ज्ञान अनेकांतिक होने के कारण से वो द्रव्य पर्याय दोनों को जानता है। कैसे जानता है, वो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, इस प्रकार से वो जानता है। मगर वो जानता है जब वो प्रमाण ज्ञान से जानता है कि द्रव्य भी है और पर्याय भी है, और पर्याय और द्रव्य कथनचित भिन्न है और अभिन्न भी है, इस प्रकार से ज्ञान जानता है। तो ज्ञान है तो दोनों को समान रूप से जानता है। ज्ञान जो है वो सब विवेक करने वाला है, ज्ञान में कोई भी बात उससे छुपी नहीं रहती है। ज्ञान जब ही अपने अपने पर को भी जानता है तो वो जिस प्रकार से उसकी स्थिति है उसको भी जानता है, और जब ही अपने द्रव्य स्वभाव को जानता है तो जैसी उसकी स्थिति है ऐसा जानता है। तो अपनी द्रव्य की क्या स्थिति है, कि वो तो अनंत शक्तिमय है, अनंत शक्तिमय है, उसमें अनंत 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 शक्ति भरी हुई है, आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुणी शक्ति भरी हुई है। और उसका अस्तित्व कभी का है, अनादि का है, और अनंत काल रहने वाले हैं, अविनाशी शक्ति है, अविनाशी उसका स्वभाव है। और उसमें फिर कारणसूत पर्याय है, कारणसूत पर्याय हरेक समय विभक्ति हुई, पूजित पंचम का की परिणति है, उसमें निमग्न पर्याय है, सब भूतकाल में जितनी भी पर्याय चली गई वो भी उसमें निमग्न है, और भविष्य में आने वाली अनंत पंच परमेश्वर की पर्याय है, अनंत अरिहंत की, असंख्य अरिहंत की और अनंत सिद्ध भगवान की, इस प्रकार की जितनी भी पर्याय आने वाली है वो सब उसमें निमग्न है। इस प्रकार की द्रव्य की स्थिति का ज्ञान जब वो करता है तो उसके पास में ये पर्याय प्रकट हो रही है, उसकी स्थिति क्या है, कि वो तो एक समय की है, वो एक गुण की पर्याय है, तो अनंत गुण की एक साथ में लो तो भी वो एक समय की है, एक समय की है, जब प्रकट होती है तो अपूर्ण होती है, फिर यदि वो पूर्ण हो जाए तो, नहीं पूर्ण हो जाए तो फिर भी वो भी अपूर्ण का नाश करके प्रकट हुई है, वो कर्म का अभाव की अपेक्षा रख के प्रकट हुई है। इस प्रकार से उसमें वो आवरण की अपेक्षा रखती है, सापेक्षपणा लगता है, एक समय की अवस्था है, तो उसकी कोटि जो है वो द्रव्य की कोटि के पास में जब उसकी जो सबके दोनों का मिलन करता है तो द्रव्य की कोटि के पास में वो पर्याय की कोटि उसके अनंत में भाग में है। द्रव्य की कोटि जितनी है, उसका जितनी महिमा है, उसका जितना अस्तित्व है, उसका स्वभाव है, वो कितनी भी पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो, मगर केवल ज्ञान की ऐसी अनंत की पर्याय जिसमें से निकलती है, ऐसा द्रव्य का जो अपना अस्तित्व है वो उसकी कोटि तो इससे अनंत गुणी ज्यादा है। इस प्रकार से वो द्रव्य के और पर्याय का जैसा स्वरूप है इस प्रकार से वो जानता है।
बराबर, लेकिन ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा है नहीं, एकांत
नहीं, बराबर,
जब स्वभाव नहीं है तो एकांत को कैसे उसमें जानता होगा, या मान्यता के कारण
नहीं, वो एक नहीं से जानता है। जो ज्ञान जो है वो प्रमाण रूप ही रहता है, ज्ञान का जो स्वभाव है, हर एक ज्ञान का स्वभाव है प्रमाण, प्रमाण माने वो सबको जानता है, वो प्रामाणिक है, जैसी स्थिति है ऐसा जानता है, अपनी अस्तित्व में जैसी स्थिति है वो सबको जानता है। मगर वो उसमें जो शुद्ध ज्ञान जो होता है, अभी शुद्ध ज्ञान से अपनी आत्मा जानने में आता है, तो शुद्ध ज्ञान की जो स्थिति है उसमें नहीं पड़ते, अनंत नहीं पड़ जाते, मुख्य पर अभी अपने को दो नहीं देखना है, द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध नहीं, निश्चय नहीं, और एक पर्यार्थिक नहीं। वो द्रव्यार्थिक नहीं जो है उससे वो एक ही उसका धर्म जानने में आता है, तो वो द्रव्य को जब जानता है ज्ञान, तो परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वो द्रव्य को जानता है, और पर्याय को जानता है वो कुछ नहीं से जानता है, वो व्यवहार नहीं से जानते हैं, इसलिए उस द्रव्य को वो ज्ञान जानता है। वो दृष्टि को विषय भी कौन देता है, कि ज्ञान ही देता है, कि उसमें से ये दोनों भाव है, एक द्रव्य रूप भाव भी है वो एक पर्याय रूपाव की है, पर्याय में रागे वो तो अपना स्वभाव है, उसको तो निकाल देते हो, वेदना करके उसको बाहर निकाल देते हैं, मगर अपना ज्ञान का परिणाम है वो अपना स्वभाव है, वो दो भाव को वो जानता है, वो दो भाव को जान के दो की जैसी स्थिति है वो ज्ञान उसमें से विवेक करता है कि इसकी क्या स्थिति है, वो द्रव्य की स्थिति है वो उससे ऊंची है, उपाधेय है और पर्याय है वो है। उपाधेय और एक पढ़ना किस कौन करता है कि ज्ञान करता है, और किस भाव में करता है, वो नहीं के नहीं में करता है, वो ज्ञान का जो नहीं भाव है उसमें वो दोनों का भेद करता है। वो प्रमाण ज्ञान में तो दोनों को जानता है, प्रमाण में कुछ ऐसा है उपाधेय तत्व तो नहीं होता है उसमें, वो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो तो सबको जानने की स्थिति होती है, प्रमाण ज्ञान जैसी स्थिति है ऐसी जानता है, मगर उसमें नहीं काम करती है, तो नहीं काम करती है उसमें वो जो अपना द्रव्य स्वभाव जो है वो परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से उस विषय को जानता है, वो ज्ञान जो जानता है वो ग्यारहवीं गाथा में दृष्टि का विषय वो भी ज्ञान की अपेक्षा समझे कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है, शुद्ध नहीं वो तो ज्ञान की पर्याय है, तो उस अपेक्षा ऐसा समझाते हैं, तो वो तो ज्ञानी विवेक करता है, ज्ञानी इसमें ये जो है वो व्यवहार नहीं का विषय है, राग की पर्याय वो ज्ञान की पर्याय वो व्यवहार नहीं का विषय है, असद्भुत व्यवहार नहीं वो सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, वो अभूतार्थ है, और शुद्ध नहीं का विषय जो है अपना त्रिकालिक द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध नहीं का विषय। इस प्रकार से दो के बीच का जो भेद ज्ञान करते हैं वो ज्ञान करता है, फिर ज्ञान करता है तो ज्ञान जो करता है उसमें से दृष्टि जो अपना मूल स्वभाव है उपाधि तत्व है उसको दृष्टि पकड़ लेती है कि ये जो है वो मैं हूं, वो दृष्टि उसके ऊपर स्थापित हो जाती है, ये जो सकण निरावरण जो भाव है अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में वो मैं हूं, वो खंड ज्ञान जो है कि जो पर के साथ में संबंध करके अशुद्ध भी होता है वो अज्ञान भी होता है, फिर वह उसका संबंध छोड़ के अंश शुद्ध ज्ञान भी होता है, वो शुद्ध पर्याय भी प्रकट होती है, फिर वो सबका संबंध छोड़ के वो परिपूर्ण अपने आत्मद्रव्य मिलियन ओण के वो पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार के भेद पर्याय में पड़ जाते हैं तो वो उसकी कोटि ए में जाती है, उसको वो पर्याय भी वो दृष्टिया भी स्वीकार नहीं करती है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूं, वो कैसी भी पर्याय हो पर्याय परिणाम जाती है, मगर द्रव्य मैं तो यूं का यूं ही रह जाता हूं। इस प्रकार से दृष्टि उसी अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध परिणामी भाव द्रव्य को ही दृष्टि में लेती है, हाँ उस ज्ञान ज्ञान में वो जो अपना जो द्रव्य स्वभाव है उसमें वो ज्ञान ने जान लिया कि ये जो है वो मुख्य द्रव्य है, ये मुख्य अपना विषय है, यही वास्तव में आत्मा है, ये उपाधि आत्मा है, वो ज्ञान उपाधि तत्व को भी जानता है और ये तत्व को भी जानता है, दोनों को साथ में भी जानता है प्रमाण ना, और उसके बाद में भी एक स्थिति है कि वो दोनों को अभिन्न बने जानता है, जैसे द्रव्य को जानता है और पर्याय को जानता है और दोनों को भिन्न तरीके से जानता है और दोनों को अभिन्न तरीके भी जानता है, अकेले द्रव्य को जाने वो परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्य सीखने का शुद्ध नहीं का विषय, और अकेले पर्याय को जाने वो व्यवहार नहीं का विषय वो अपन ने देखिए, और दोनों को जाने वो दोनों को भिन्न भिन्न तरीके जाने वो प्रमाण का विषय, फिर ये दोनों को अभिन्न तरीके जाने, अभिन्न तरीके जब जाने तो कैसा विषय किसका विषय बनेगा, दोनों को अभिन्न तरीके, क्योंकि अभिन्न अभिन्न में ही अभेद में ही निर्विकल्पना होगा, जब तक वो द्रव्य गुण पर्याय इसके भेद में विकल्प में जब तक रहेगा तब तक वो आत्मा का अनुभव हो सकता नहीं है, जैसे सेतिका में कहा कि चेतयिता का चेतयिता अन्य द्रव्य का तो नहीं है मगर चेतयिता का चेतयिता है, तो ऐसा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है, तो ऐसे दो भेद नहीं है, वो स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है, वो द्रव्य और पर्याय का दो स्वामी दो भेद स्वस्वामी अंश रूप से दो भेद करना वो व्यवहार है, मगर चेतयिता तो चेतयिता ही है, अपने आत्मद्रव्य को अभेदपणे जो जानने रूप से परिणम गया वो चेतयिता हो गया, ऐसा पर्याय का निश्चय जो प्रकट हो गया तो अभी आत्मा चेतयिता चेतयिता है, इस प्रकार से जो आत्मद्रव्य को जानता है तो इस प्रकार से द्रव्य और पर्याय का अभिन्नपना भी जानना होता है, वो ज्ञाता ज्ञान ये सब अभेद है, ज्ञाता ज्ञान ये सब अभेद है, कर्ता कर्म क्रिया सब अभेद है, वो छटाड़ा में लिया ना क्या है, जहाँ ज्ञान जाता ध्येय के न विकल्प वच वेदन जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निर्मल निश्चल दशा। ऐसे शुद्ध उपयोग में क्या होता है कि कर्ता कर्म क्रिया ज्ञाता ज्ञान दे ज्ञाता ज्ञान दे सबका अभिन्नपना क्या क्या ज्ञान होता है, तो अभिन्नपना जब जानने में आता है तो वो कौन से ज्ञान का विषय होगा? अबे इसको अकेले को जाने वो कौन से ज्ञान का विषय होगा? परम भावग्राही शुद्र व्यर्थिक नहीं का शुद्ध नहीं का विषय होगा। अकेली पर्याय को जाने वो कौन से ज्ञान का विषय होगा? ये व्यवहार नहीं का विषय। दोनों को साथ में भिन्न भिन्न पने जाने वो कौन से ज्ञान का विषय होगा? और दोनों को अभिन्न पने जाने वो दोनों को अभिन्न पने जाने वो कौन से वो कोई नहीं का विषय बनेगा या प्रमाण का विषय बनेगा? आज ही गुरुदेव ने दिया है, एक मिनट देखो, आज ही दिया, सबका ध्यान नहीं गया होगा। तो इसमें राग से भिन्न करने की बात चल रही है कि राग है उसके प्रदेश विभिन्न है और जानन क्रिया है वो आत्मद्रव्य से अभिन्न है, ऐसी बात आई वो मूल में टीका में। तो गुरुदेव उसका खुलासा करते हैं, शांति की क्रिया ज्ञान थी अभिन्न है, आत्मा स्वभाव थी ते पर्याय अभिन्न है। आत्मा के स्वभाव से वो जो अपनी जाति चैतन्य के जाति परिणाम जो प्रकट है प्रकट हो रहा है वो अपने आत्मा से अभिन्न है और अभिन्न होने लेते वो ज्ञान है, वो ज्ञान में ही है, अपना आत्मा जो है वो ज्ञान में ही है। इस प्रकार की एक बात सिद्ध करनी है कि वो आत्मा किधर है कि अपनी जानन क्रिया में है और आगाधि क्रिया में क्रोधाधि क्रिया में नहीं है। इस प्रकार की जो बात चल रही है तो एक मुमुक्षा का प्रश्न आया, ये डॉक्टर चंदू भाई का प्रश्न आया कि पर्याय में द्रव्य आवे उत्तर, ये पर्याय में द्रव्य आयु नहीं पर आ बाजु सन्मुख थी गयु त्यारे अभिन्न छे एम, बाकी पर्याय पर्याय छे अने द्रव्य द्रव्य छे, कभी पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती है और द्रव्य कभी पर्याय नहीं होती क्योंकि दो साथ अलग अलग रूप से चल रहा है, इसलिए वो कभी एक तो होता ही नहीं है। उसकी बात सही है, ये अत्यारे नहीं लेव, अभी यदि अभी ये द्रव्य है वो भिन्न है, वो पर्याय है वो भिन्न है, वो बात अभी नहीं लेनी है। जानन क्रिया में आत्मा अवस्थित है वो बात अभी सिद्ध करनी है, तो जानन क्रिया में उपयोग है वो बात सिद्ध करनी है, उपयोग भी भिन्न है मेरे से, उसका द्रव्य भी भिन्न है, उसका क्षेत्र भी भिन्न है, वो बात सिद्ध नहीं करनी है। अभी क्या सिद्ध करनी है कि जानन क्रिया के आधार से अपना द्रव्य जानने में आता है और आत्मा जानन क्रिया रूप परिणमता है, वो उसमें व्याप्ता है, वो दोनों एक साथ है, वो एक एक सत्ता है, द्रव्य और पर्याय दोनों एक सत्ता है, वो ज्ञान मात्र भाव है, एक ज्ञा एक भाव है। इस प्रकार से इसको सिद्धता है, वो अत्यारे सिद्ध नहीं करूं, ये अत्यारे नहीं लेव। अभिन्न अर्थ अभेद थी गयो, अभिन्न का अर्थ दोनों अभेद हो गया, द्रव्य और पर्याय दोनों अभेद हो गए, राज से भिन्न छे एवी रीते आ अभिन्न छे एम। राग जो पर्याय जो है वो अपने से बाहर रहेगी, वो मेरे से भिन्न नहीं है, वो अभी नहीं है, वो मेरे से भिन्न है, वो कथनजित पुद्गल के, वो पुद्गल का परिणाम है, मेरा परिणाम ही नहीं है, मगर जो अपनी जात का परिणाम प्रकट हुआ वो मेरे से अभिन्न है, इस प्रकार से वो जानता है तो वो अभिन्न है एम। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि मुंगसु द्रव्य ने पर्याय ने अभिन्न कहू ये कई नहीं नु कथन है, नहीं का कथन है या प्रमाण का कथन है, वो कौन सी बात का कथन है? उत्तर अत्यारे निश्चय नहीं कथन है। क्या कहा? ये भी बात है, निश्चय नहीं की बात है माने वो शुद्ध नहीं की बात है। तो ग्यारहवीं गाथा में कहा कि वो उपयोग से नहीं थे वो शुद्ध नहीं का विषय, और इधर कहा कि निश्चय नहीं की बात है माने शुद्ध नहीं की बात है, तो उसमें क्या फर्क, क्या समझना आपने? वो शुद्ध नहीं का विषय जो है वो उपाधेय है तो वो ग्रहण करने योग्य है, उसके जिसके ग्रहण करने से अपने आत्मा का जो प्राप्ति हो गए वो जो है वो निश्चय नहीं का विषय है। तो वो एक बाजू कहते हैं कि उपयोग से भी रही ज्ञान की पर्याय से भी रही वो निश्चय नहीं का शुद्ध नहीं का विषय, और इधर कहते हैं कि जो द्रव्य पर्याय जो अभिन्न बना हुआ तो भैया ये जो दो प्रकार की शैली चलती है वो दोनों को समझनी पड़ेगी, वो एक दृष्टि प्रधान शैली है और एक ज्ञान प्रधान शैली है। वो ग्यारह गाथा में जो बता रहे हैं वो दृष्टि प्रधान शैली से वो शुद्ध नहीं के विषय को बता रहे हैं, तो वो तो पर्याय से रही थी है, ज्ञान की पर्याय से भी रही है उसको शुद्ध नहीं का विषय का, और इधर ये ज्ञान प्रधान शैली चल रही है तो उसमें ज्ञान प्रधान शैली में द्रव्य और पर्याय का जो अभिन्नपना है वो शुद्ध नहीं का विषय बनेगा, वो दो को भिन्न भिन्न तरीके जानना वो प्रमाण का विषय होगा, दोनों को भिन्न भिन्न तरीके जानना, तो उसमें पर्याय का विषय जो है वो यही है, वो दृष्टि प्रधान में जाएगा फिर, वो दृष्टि का विषय दृष्टि में लेने की बात है। वो ज्ञान प्रधान में जब निर्विकल्प अपने आप का आत्मनिर्विकल्प का अनुभव करना है, तो वो ज्ञान प्रधान से जब तक वो दो के बीच में भेद रहेगा तब तक उसको विकल्प का राग का अभाव नहीं होगा। तो दोनों का अभिन्न बना जब होगा तभी वो साध्य सिद्ध होगा। वो ज्ञान प्रधान सुधरने का विषय माने क्या कि वो साध्य अनुभव का विषय, वो साध्य का विषय, वो प्रकट करने योग्य विषय। और दृष्टि प्रधान शुद्ध नहीं का विषय माने क्या कि वो आश्रय करने योग्य, वो उपादेय तत्व, कोई भी पर्याय वो आश्रय करने योग्य नहीं है, मगर उपादेय तत्व है वो दृष्टि प्रधान शुद्ध नहीं का विषय होगा। और प्रकट करने योग्य, अनुभव करने योग्य, ज्ञान करने योग्य, साध्य करने योग्य कोई भी विषय होगा वो कौन सा विषय होगा, वो ज्ञान प्रधान शुद्ध नहीं का विषय होगा। तो ज्ञान की भाषा में यदि बोले तो वो सुधरने का विषय कहते हैं, और श्रद्धा की भाषा में यदि उसको कहे तो दृष्टि का विषय कहते हैं। जो सुधरने का विषय है वही दृष्टि का विषय है। तो जो ग्यारहवीं गाथा में दृष्टि का विषय कहा वो दृष्टि के विषय के नाम से वही प्रसिद्ध है। मगर गुरुदेव ने सम्यक दर्शन दो प्रकार के कहे, एक दृष्टि प्रधान सम्यक दर्शन और ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन, और दो के विषय भी बता रही है वो क्या क्या है। तो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन या ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय माने क्या कि वो प्रकट करने योग्य, साध्य करने योग्य, अनुभव करने योग्य, ज्ञान करने योग्य, वो ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय है। और जो आश्रय करने योग्य उपाधि तत्व जो है सकल निरावरण, वो दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय। इस प्रकार के दो भेद पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो बताए हैं उस प्रकार से यदि अपन समझेंगे तो उसमें इसमें कुछ घोटाला नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और दोनों इस एक प्रकार से उपाधेय है, किस प्रकार से, एक आश्रय करने योग्य उपाधेय है और एक प्रकट करने के उपाधि है। तो किसी को ऐसा लगता है कि इतना अपने अपने मुख को ऐसा हो जाता है कि ये दृष्टि के विषय जो कहते हैं वो पर्याय भी शामिल हो गई, उत्पाद भी शामिल हो गया, ये तो इसको इसको दृष्टि का प्रमाण को दृष्टि का विषय कहते हैं। भैया प्रमाण को दृष्टि का विषय कहने की बात नहीं है, ये निश्चय नहीं का विषय। जिस प्रकार से गुरुदेव बता रहे हैं कि ज्ञान है वो आत्मद्रव्य में, वो आत्मद्रव्य वो चैतन्य अपने ज्ञान में उपयोग में स्थित है। इस प्रकार से अपने आत्मा को जब अभेदपने नहीं जानेगा तब तक उसको साध्य की स्थिति अनुभव नहीं होगा। वो दो के बीच में भेद ही रखा जब तक रखा करे, वो दृष्टि की मुख्यता से, दृष्टि के पक्ष से यदि दो के बीच में भेद ही रहा करेगा तब तक वो अभेदपना नहीं होगा, तब वो साध्य अनुभव निर्विकल्पना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दोनों का जानना बहुत ही जरूरी है। वो अपन लास्ट ईयर भी ये विषय थोड़ा लिया था। ये बात तो अवार नवार शास्त्र में मिलती रहेगी। ये गुरुदेव का आधार है कि ये दोनों निश्चय नहीं का विषय है। निश्चय नहीं का मतलब वो दोनों ज्ञान प्रधान सुधने का विषय इस प्रकार से है। इस प्रकार से दोनों को जानना। इधर पूज्य बहन श्री भी यही कह रही है कि पर्याय वो कथनचित अभिन्न है, पर्याय नु जेव कथनचित भिन्न अभिन्न स्वरूप से जाने, तेना प्रयत्न में जेवा विभाव ने स्वभाव भागला पाड़े छे तेवी जातना सर्वथा भागला पर्याय साथे नथी पाड़तो, तेना ज्ञान में ते पर्याय ने जाने छे अने द्रव्य ने मुख्य करे छे। दो प्रमाण ज्ञान जब करता है तो उसमें दो नहीं चलती है, वो निश्चय नहीं भी चलती है और व्यवहार नहीं भी चलती है। तो द्रव्य को मुख्य करता है और पर्याय को गौण करता है। द्रव्य ने मुख्य करे छे, पर्याय ने गौण करे छे, पण पर्याय सर्वथा भिन्न छे एवी जातनु भेद ज्ञान तेमां आवतुं नथी। તે પર્યાયને ગૌણ કરે છે અને દ્રવ્યને મુખ્ય કરે છે। જેવો વિભાવ અને સ્વભાવનો ભેદ પડે છે તેવો પર્યાય અને સ્વભાવનો ભેદ નથી પડતો, કેમ કે પર્યાય કથનથી દબીન છે, જે જેમ હોય તેમ જાણવાનું હોય છે। એટલે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રધાન છે, કેસા કથન ચલતા હે ઓર ક્યા સ્થિતિ હે વો ભી જાનના ચાહીએ, ઓર જ્ઞાન પ્રધાન છે કેસી સ્થિતિ હે વો ભી જાનના ચાહીએ। યદી વો એકાંત મેં ખિંચ જાવે, વો દ્રષ્ટિ પ્રધાન કે એકાંત મેં, દ્રષ્ટિ કી પ્રધાનતા માને વો દ્રષ્ટિ કા વિષય હી ઉસકી બાત કરે, उसकी चर्चा करे, उसका चिंतन करे, उसका मनन करे, तो किसी को ऐसा लगे को अभी ये दृष्टि का पक्ष हो गया, दृष्टि का जोर आ गया, वो ऐसा जोर नहीं आता है। वो दृष्टि का जो पक्ष है वो जोर वाला नहीं है, वो वितराग अवस्था है। वितराग अवस्था है तब वो दृष्टि भी सम्यक होती है और ज्ञान भी सम्यक होता है। तो ज्ञान में जैसी स्थिति है अभी अपन ने जो ज्ञान की चर्चा की वो ऐसी स्थिति ज्ञान की जी बता रहे हैं। जो पूज्य बहन श्री ने ये जो जवाब दिया है वो ज्ञान प्रधान से जवाब दिया है, दृष्टि प्रधान से जवाब नहीं दिया है। वो ज्ञान प्रधान से जैसा जवाब दिया है उस प्रकार से ज्ञान की स्थिति भी अपने को जैसी है ऐसी जानना है। और दृष्टि और ज्ञान दोनों का समय बना किस प्रकार से हो गए ऐसा ऐसा दोनों को समझ के अपने को साधना करनी है, वो सब समझना है।